जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म केवल भक्ति सत् श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा वंद मोहे सवदान माते वंद मोहे सवदान माते वंद मोहे सवदान माते प्राप्ति होते कृष्ण प्राप्ति आया Yeah. प्रसाद पूरे सर्वाशय सुदन दिल जय जन्म जन्म प्रभु सोई सुदान दिल जय जन्म जन्म चक्षुदान दिल जय जन्म जन्म प्रभु सोई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश प्रेमा भक्त होते वेदाम नशहते वेद गाय यहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंह अदम जाना बंदे Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada Guru Puja ki, Srila Prabhupada Guru Vandana ki. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta. Swamiti Namine Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarine Nama Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarine जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभु जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शबे गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जलता जलता हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा जलता जलता हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 La Prabhupada ki Jayang Vishnupad Paramahansa Padmacharya Ashtottara Shatavarsha Sisima Srila Bhakti Chandra Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivashadi Sikaur Bhaktavinda ki गंगा माय की जमुना माय की ब्रजमंडल वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम कुत्त जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा गिरिधर जी भगवान की
जगन्नाथ बलदेव शुद्ध महाराणी की, श्री गौरनिताय की, जगदन हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शिल्पोपाटल सेंट्रल बुक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, चातुर्मास व्रत महामहोत्सव की, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस, ऑल ग्लोरियस, ऑल ग्लोरियस श्री गुरु एंड श्री गौरांग, ऑल ग्लोरियस श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। टुडेज भागवतम क्लास विल बी गिवन बाय हिज ग्रेस गौर कृष्णदास प्रभु।
हरे कृष्णा।
बड़ा भाव में कीर्तन गाते हैं बनवाली जी। आपके जयकारी और कीर्तन दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 जय यशोदा नंदन ब्रज जनिरंजन, जय यशोदा नंदन ब्रज जनि रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बल देवा, जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बल देवा, जय जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
आचार्य अष्टोत्तर से डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के श्री कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन के ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की भगवत बाणी श्रीमद्भगवद गीता की गौर हरि प्रेमानंद गौर हरि प्रेमानंद जय श्री राधे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधागोविन्द गोस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते प्रभुपादाय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजनेस्तारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदे अनंत ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् साद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभुः निर्मायशेते जद्मोषपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टभगवान् पचांसि मे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ आचार्य सुत तेषां बुद्धिं एकांत संस्थितां आलक्ष्य भीत त्वरित रागे आवेदयाद यथा अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिमेकांत संस्थितां आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद् यथा अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धि मेकांत संस्थितां आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद यथा अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धि मेकांत संस्थितां आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद यथा। हरे कृष्ण। अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धि मेकांत संस्थितां अलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद यथा। आचार्य सुतस्तेषां एकांत संस्थितां अलक्ष्य भीतस्त्वरितो बुद्धि में कांत संस्थितां माता जी। यथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धि मेकांत संस्थितां आलक्ष्य भीतस्त्वरितो अथ तदुपरांत इसके बाद आचार्य सुत शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर तेषाम उन असुर पुत्रों की बुद्धिम बुद्धि एकांत संस्थिताम केवल एक ही विषय भक्ति में स्थिर लक्ष्य देखकर भीतः भयभीत होकर त्वरितः तुरंत राज्ञ राजा हिरण्यकश्यपु से आवेदयत कह सुनाया यथा उचित ढंग से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए। अतएव असुर राज हिरण्यकश्यपु के पास गए और उनसे सारी स्थिति कह सुनाई। तात्पर्य बुद्धि में एकांत संस्थितम शब्द सूचित करते हैं कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है। बात यह है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है वह कृष्ण भावना मृत में स्थित हो जाता है। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में इसे देखा अतएव वे डर गए क्योंकि सारा विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होता जा रहा था। बस यह है तात्पर्य। इसके पहले दो अध्याय है 6 और 7 जिसमें प्रहलाद महाराज के द्वारा दी गई भागवत की शिक्षाएं हैं। पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के अंत में एक घटना का वर्णन करते हैं नारद जी या सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी जो भी कहिए। इस स्कंद के वक्ता हैं मुख्य रूप से देवर्षि नारद सातवें स्कंद के और एक कथा राजसूय सभा में हो रही है मुख्य कथा जहां महाराज युधिष्ठिर सोता है। शिशुपाल के वध के बाद जब उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में मिल गई तो महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा किए कि ऐसा कैसे हो गया। ये तो जब से बोलना प्रारंभ किया तभी से भगवान की निंदा करता था तोतली बोली में बोलता था तभी से इसको इस तरह की गति कैसे मिल गई है। तो इसी को बताने के लिए देवर्षि नारद जी को नियुक्त किया गया ऋषियों के द्वारा। तो देवर्षि नारद बताने के लिए उनके पूर्व जन्म की कथाओं को कहने लगे कि ये भगवान के पार्षद हैं जय विजय और 3 जीवन में इनको इससे मुक्ति होना था क्योंकि इनको सनकादि का श्राप था ब्रह्मा जी के पुत्रों का। तो अब इनका अंतिम जीवन है इसलिए नित्य भगवत पार्षद भगवत धाम में चला गया। ये कोई सिद्धांत नहीं है एक स्पेशल केस है। भगवान की निंदा करने वाला भगवत धाम नहीं जाएगा ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए लेकिन ये स्पेशल केस है। उसी क्रम में प्रहलाद महाराज ने बताया कि जब ये 3रे जीवन में हिरण्यकश्यपु के रूप में जब पहले जीवन में हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष के रूप में था तो ये अपने भगवत भक्त पुत्र प्रहलाद के साथ बड़ा अन्याय किया। तो फिर से महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा करते हैं कि पिता होकर पुत्र के साथ क्यों ऐसा किया। तो उसी को बताने में लगभग 10 अध्याय बोलना पड़ा देवर्षि नारद को। और इस कथा को गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सीधे रिले कर रहे हैं, जो देवर्षि नारद कहे हैं उसी कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य को रिले कर रहे हैं। इसलिए भागवत के पढ़ने और सुनने वाले व्यक्ति को ये सब बातों को जानना चाहिए। कभी कभी बीच में सूत गोस्वामी आ जाते हैं, कहाँ से आ गए, तो हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि हमको भागवत नैमिषारण्य से प्राप्त हुआ है। नैमिषारण्य में जो भागवत का प्रवचन हुआ सूत गोस्वामी के द्वारा, उसी को व्यास जी रिकॉर्ड करके अपने दिमाग में लिखे हैं, तो वहाँ की कथा हमको प्राप्त हुआ है नैमिषारण्य के। तो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को प्रस्तुत करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो विविध कथाओं को जहाँ तहाँ से प्राप्त किए हैं वो, तो इस प्रकार यह सातवां स्कंद पूरा पूरा देवर्षि नारद के द्वारा बोला गया है। और इसके मुख्य श्रोता हैं महाराज युधिष्ठिर राजसूय सभा में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं या देवर्षि नारद कहते हैं जो कहिए, पांचवें अध्याय के अंत में कि एक दिन की घटना है कि प्रहलाद अपने असुर सहपाठियों को एक जगह एकत्रित किया। संयोग की बात गुरुजी लोग उस दिन नहीं थे और बच्चे खेल रहे थे, खेल में लगे हुए थे, तो प्रहलाद महाराज उन लोगों को संबोधित किए, बुलाए, कह रहे मित्रों आओ बैठो, जीवन का अमूल्य समय बिथरा जा रहा है, कुछ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बड़े ही सौहार्द में प्रहलाद महाराज ने बच्चों को बुलाया और बच्चे जब बैठ गए तो उनको भागवत धर्म की शिक्षा देने लगे, प्रारंभ किए, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि ह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुमर्थदम। मित्रों भगवान का भजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो बचपन में एकदम प्रारंभ से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है। तो ठीक है दुर्लभ है तो है, लेकिन मिल गया ना, अब तो मिल गया, जिसके लिए दुर्लभ है उसके लिए है, हमको तो मिल गया। कहते नहीं नहीं कोई गारंटी नहीं कब खत्म हो जाएगा, अध्रुवम, अच्छा खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके साथ कहते हैं कि लेकिन निश्चित रूप से दुर्लभ है, अनित्य है, दोनों बात है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक विशेषता है कि अर्थदम है, यह महान अर्थ को देने वाला है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य उसको भी दे सकता है सावधानी के साथ, अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये अर्थ को देने वाला अर्थद है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज बड़ा ही सुंदर ढंग से कहते हैं बचपन में ही भजन करना चाहिए। फिर आगे लंबा प्रवचन है, आप सुने हैं फिर से पढ़ लेना चाहिए। कहते हैं जीवन बीतता जा रहा है, आधा जीवन सोने में, और इसके साथ बचपन बुढ़ापा और बीच का तो इतना व्यामोह में, स्त्री पुत्र कलत्र के व्यामोह में बीतता है कि होश ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर शिक्षा दिए, तो उनके सहपाठियों ने जिज्ञासा किया कि प्रहलाद आखिर इतनी अच्छी बातें तुमने सीखा कहाँ, हम लोग तो देख रहे हैं कि बचपन से तुम अपने माँ के साथ रहे और पिता भी बिल्कुल कृष्ण विरोधी, वो कहीं कृष्ण कथा की व्यवस्था करता नहीं, और इस बार विद्यालय में तो कृष्ण भक्ति का नामो निशान नहीं, कहां तुमने इस तरह की बातें सीख लिया। यद्यपि इस बात को इसके पहले भी, इन विद्यार्थियों के पहले भी हिरण्यकश्यपु और संडमर्क शुक्राचार्य के पुत्र जो प्रहलाद के शिक्षा के लिए लगाए गए थे वे लोग भी पूछ चुके हैं, चौथे पांचवें अध्याय में वर्णन है, पूछ चुके हैं। प्रहलाद महाराज ने बताया भी है, भक्ति को इनडायरेक्ट रूप से बताया है कि किस प्रकार हमने प्राप्त किया, लेकिन अपने सहपाठियों से प्रहलाद महाराज ने एकदम क्लियर, किसी भी छल कपट के बिना साफ साफ बताए कि मैं देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त किया, और कहाँ प्राप्त किया, तो माता के गर्भ में। जब मैं गर्भ में था तो साधारण ऑर्डिनरी प्रीचर नहीं है नारद जी, वो गर्भस्थ शिशु को भी प्रीच कर दिए। तो देवर्षि नारद की घटना को बताते हैं कि जब हमारे पिताजी मंदराचल पर तपस्या करने चले गए थे तो उस समय देवराज इंद्र हमारे राजधानी में आक्रमण किया, खूब जैसा बना वैसा किया, और हमारी माँ उस समय गर्भवती थी, उसके गर्भ में मैं था, तो माँ को लेकर चल दिए देवराज इंद्र। रास्ते में देवर्षि नारद उनको रोके, मिलने पर कहे कि अरे देवराज, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, एक तो स्त्री है और दूसरी बात है गर्भवती है, तुम इसे क्यों इस तरह दुख दे रहे हो। रो रही थी, कुररी पक्षी की तरह रो रही थी, कह रहे नारद जी। तो जब रो के प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब देवराज इंद्र ने कहा कि इस स्त्री से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके गर्भ में हमारे शत्रु का तेज है, वीर्य है, और ये बालक जब जन्म लेगा तो बालक का वध करेंगे और इस स्त्री को छोड़ देंगे। तो नारद जी ने कहा कि अरे देवराज, तुम इस गलत फहमी में मत रहो, इसके गर्भ में भगवान का प्रिय भक्त है, तुम इसे छोड़ दो। तो देवराज तुरंत अपनी मानसिकता बदल दिए, प्रणाम किए, परिक्रमा किए हमारी माँ का और चले गए। फिर देवर्षि नारद हमारी माँ को एक आश्रम पर लाए और कहे कि यहीं रहो बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं लौटता है। तो वहीं हमको इंगित करते हुए देवर्षि नारद ने भागवत धर्म का उपदेश किया, जिस प्रकार उपदेश किए हूबहू बता रहे हैं किस प्रकार से उपदेश किए। उस ज्ञान से, मुख्य रूप से देवर्षि नारद की कृपा से, केवल जिस रूप में प्रहलाद महाराज ने रियलाइज किया है अपने साथियों को बताते हुए या भगवान नृसिंह देव के समक्ष, वह बहुत मुश्किल से लोग रियलाइज कर पाते हैं, क्योंकि ये आचार्य हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि केवल देवर्षि नारद के थोथे प्रवचन से मैं नहीं इस तरह का भक्त हुआ हूँ, मुझ पर स्नेह कृपा दृष्टि से देवर्षि नारद ने उपदेश किया। माँ को उपदेश कर रहे थे, लेकिन गर्भस्थ शिशु मेरे ऊपर स्नेह की दृष्टि से उपदेश कर रहे थे, चाहते थे कि बालक इस धर्म को समझे। तो देवर्षि नारद की कृपा दृष्टि ने मुझको आज तक वह ज्ञान स्मरण करा रहा है, कृपा दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि से आज तक मैं उस ज्ञान को धारण किया हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। और माँ एक तो स्त्री जाति की है, दूसरे काल भी बहुत बीत गया, भूल चुकी है, तो बच्चे प्रश्न कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं भूले, माँ तो फिर प्रकट सुन रही थी, आप गर्भ में थे, आप क्यों नहीं भूले, आप तो बिल्कुल अबोध थे। तो इसके पीछे देवर्षि नारद की कृपा है, वो चाहते थे कि ये न भूले। तो महत कृपा के बल पर आज तक मुझे याद है, बतला रहे थे। और प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के चरणों में जब स्तुति कर रहे थे तो वहां भी कह रहे थे, मैं भी निश्चित रूप से इस भवसागर में गिरने ही वाला था, तब तक सुरसिणा देवर्षि नारद ने मुझको संभाल लिया, और उनकी कृपा दृष्टि ऐसे हुई है नृसिंह देव कि आज मैं उनकी कृपा से आपका साक्षात्कार किया। इसमें मेरे कोई साधन तपस्या का बल नहीं है, देवर्षि नारद की कृपा का बल है, प्रहलाद महाराज कह रहे थे। तो इस प्रकार जब बच्चे भागवत धर्म का उपदेश सुने तो पूरे के पूरे जितने लोग सुने उतने लोग भक्त हो गए, क्योंकि पूर्णतः समर्पित प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे थे, जिनके हृदय में, मन में, बाड़ी में, व्यवहार में सब जगह कृष्ण छाए हुए थे, उनके द्वारा किए गए प्रवचन से सभी बच्चे बदल गए। और बदल गए तब जब शिक्षक लोग बाद में आए तो देख रहे हैं कि ये कहीं प्रहलाद की समस्या नहीं, पूरा पूरा स्कूल ही चेंज हो गया और सभी लोग कृष्ण भावना भावित हैं। पूर्णतः देख रहे हैं कि सारे असुर बच्चे, सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, सभी लोग कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, अत्यंत गंभीरता से ग्रहण किए हैं। ऐसे नहीं कि सुन लिए बस भूल गए, ऐसा नहीं। तो संड और अमर्क तो एकदम डर गए। यहाँ इस श्लोक में कहा गया अथाचार्य सुतस्तेषाम तदुपरांत, अथ माने इसके बाद, गुरु लोग जब सुन लिए तब सुने कौन, आचार्य सुत, आचार्य असुरों के आचार्य हैं शुक्राचार्य। तो आचार्य सुत का अर्थ है शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क, ये पढ़ा रहे थे प्रहलाद को। तो अथ इसके बाद प्रसंग बदल रहा है, क्या हुआ? तो आचार्य सुत तेषाम, तेषाम मतलब उन असुर बच्चों को जब देखे, क्या देखे कि बुद्धिम एकांत संस्थिताम। अरे बाप रे, इनकी बुद्धि तो एकदम एकांत में स्थित हो गई है, एकांत में स्थित हो गई है। एकांत संस्थिता मतलब केवल एक विषय ये सोच रहे हैं, एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और एक विषय क्या है? भक्ति। जब तक व्यक्ति का मन भक्ति में स्थित नहीं हो सकता तब तक वह एकांत नहीं हो सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे के ह कुरुनंदन बहु शाखा हेनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसके टीका एक लेख की तरह लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लंबी टीका लिखते हैं। तो अपने टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बहु शाखा हेनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जब बुद्धि अव्यवस्थित रहती है, स्थिर नहीं रहती है, तो उनकी बंदर की तरह बहुत शाखाएं ऊपर दौड़ती रहती है, इस डाल से उस डाल, कभी ये कभी वो, यह अच्छा है यह अच्छा है यह अच्छा है, दौड़ती रहती है। लेकिन जब वो व्यवस्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, बहु शाखा हेनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम, तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे के ह कुरुनंदन, एक के ह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन व्यवस्थित बुद्धि एक ही होती है, बहुत नहीं। और वह है कृष्ण भक्ति। जब तक कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं किया गया, मेरी भक्ति नहीं की गई, तब तो बंदर की तरह उछलता कूदता रहेगा। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि भक्ति को प्राप्त करके जिस से कोई जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के उपदेश को प्राप्त करता है और एकदम निष्ठा विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कि मेरे गुरु के द्वारा किया गया उपदेश ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरे जीवन के हर योजना, हर प्लानिंग है, और इसके अतिरिक्त मेरे कोई भी जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं, संसार चले या न चले, सभी लोग मर जाए, नष्ट हो जाए, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। विस्तृत टीका लिखते हैं, जो मेरे गुरु के द्वारा उपदिष्ट मंत्र है वही मेरे जीवन के लिए करणीय विषय है, वही मेरा लक्ष्य है इस जीवन में, इस जीवन के बाद भी। बस इस तरह की बुद्धि जब स्थित हो जाती है तो इसको कहते हैं एक, यह एक में स्थित होना। तो इस श्लोक की टीका चक्रवर्ती ठाकुर फिर उसी तरह लिखते हैं, जिस तरह के व्यवसायी आत्मिका बुद्धि, तो बुद्धि में एकांत संस्थिताम, बुद्धि एकांत में स्थित हो गई का मतलब भक्ति में स्थित हो गई। अब वह इधर उधर की बातें नहीं करता है। चक्रवर्ती ठाकुर तो कहते हैं कि अगर एक ही सिद्धांत, एक ही विचार, एक ही भावना में हजारों लोग स्थित रहें तो उसको एकांत कहते हैं। चाहे अकेला व्यक्ति स्थित हो चाहे लाखों हो, कोई अंतर नहीं, लेकिन विचार एक होना चाहिए, तो उसको एकांत कहते हैं। तो आलक्ष्य क्या? आलक्ष्य बुद्धि में एकांत संस्थितम, इन लोगों की बुद्धि एक में स्थित हो गई है। यह देखकर भीतर एकदम डर गए एक गुरुपुत्र लोग, एकदम डर गए। श्लोक बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल श्लोक है। आलक्ष्य भीतर, देख लिए कि ये लोग एक बुद्धि में स्थित हो गए, भक्ति में स्थित हो गए सभी लोग, तो एकदम डर गए। अब तो बड़ा कठिन आरोप हो सकता है। पहले ही हिरण्यकश्यप कह चुका है कि निश्चित रूप से इस स्वजन के रूप में ये दुश्मन है ये गुरुपुत्र लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि मित्र के रूप में अपना दुश्मन ही वेश बदल कर रहता है। तुम लोग हमारे हितैषी हो कि हमारे दुश्मन हो? इस बच्ची बुद्धि इस तरह क्यों बदलती जा रही है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, प्रहलाद महाराज अच्छी विद्या बतलाए कि इसी को मैं सबसे श्रेष्ठ उत्तम अध्ययन मानता हूं, तो एकदम हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया है। कहने लगा, रे इस तरह की बुद्धि इसको कैसे प्राप्त हुई? निश्चित रूप में इस संसार में मित्र का छेवला पहने हुए मित्र के रूप में दुश्मन लोग रहते हैं। तुम लोग इस तरह की बात क्यों सिखा रहे हो? और बेचारे तो पहले ही डरे हुए थे, कह चुके हैं कि न हमारे सिखाने से सिखा है, न कोई प्रीचर स्कूल में आता है, ऐसी बात नहीं है। इस नैसर्गिक इसकी बुद्धि है, पहले से ही हम लोग एकदम पता कर लिए, कोई नहीं सिखाया है। आप ऐसा मत भ्रम कीजिए कि कोई प्रीचिंग करने आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये लोग पहले ही डरे थे, अब तो एकदम एक प्रहलाद की समस्या नहीं, पूरा स्कूल ही बदल गया। तो ये लोग डर गए भीतः भीतः, जब डर गए त्वरितः जल्दी एकदम दौड़ कर आए तुरंत। राज्ञा आवेदयद, राजा के सामने आकर आवेदन किया, प्रार्थना किया, सरकार क्या प्रार्थना के लिए? जथा, जैसा हो गया है एज इट इज, एकदम हु बहु उचित ढंग से जथावत। श्रीधर स्वामी लिखते हैं जैसी घटना घटी है विद्यालय में उसको हु बहु प्रस्तुत कर दिए कि इस तरह की घटना हो गई है, अब आप देखिए हमारा दोष नहीं है, ये पूरे बच्चों को चेंज कर दिया। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं एकांत संस्थिताम प्रति अंगिष्ठाम यथा जथावत, बस इतना ही टीका लिखते हैं कि एकांत में स्थित हो गया ये सब बच्चे हो गए, और इनकी निष्ठा जो है, जो मानसिकता है, विचार है, वो एक में स्थित हो गया भक्ति में, और यथावत जैसा जैसी घटना घटी थी वैसा प्रस्तुत कर दिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस बात को और विस्तृत कहते हैं कि एक मुख्य च असौ अंतश्च एकांतो विष्णु भक्ति जोगो वा इति। ते कि एकांत में मुख्य रूप से एक में, और वह एक क्या? जिसका लक्ष्य एकमात्र अंतिम लक्ष्य विष्णु है, विष्णु की भक्ति है, उसमें स्थित हो गए हैं, यह रिपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अब ऐसी घटना हो गई महाराज, आप बाद में हमें मत दोष दीजिएगा, अब इन लोगों की बुद्धि बदलने वाली नहीं है। ऐसी बात नहीं कि सीख लिए तो कोई उपाय कीजिए और फिर हमको उत्साहित कीजिए और हम प्रशासन कीजिए कि नहीं नहीं फिर से पढ़ाओ, अब हमारे पढ़ाने में कोई दम नहीं है, अब इनकी बुद्धि ऐसे एक निष्ठ हो गई है भक्ति में, चेंज होने वाली नहीं है, इसलिए आप सोच लीजिए अब क्या करना है। और केवल हम ही लोगों द्वारा नहीं, कोई भी टीचर इनकी बुद्धि को नहीं बदल सकता, क्योंकि ये व्यवस्थित हो गया है, एकांत में स्थित हो गए हैं, एकांत संस्थिताम, एकांत में कृष्ण में स्थित हो गए हैं, विष्णु में इनकी भक्ति लग गई है। एकस्मिन् भगवती अंतः समावेशो जस्य तेन प्रहलाद वाक्येन संस्थितामिति। कहते एकदम एकस्मिन् एक में क्या एक में, तो उसको टीकाकार लोग कहते हैं कि एकस्मिन भगवती, भगवान में अंतः समावेश हो, इनका हृदय भगवान में लग गया है, इनके चित्त में इनके भावना में कृष्ण छाए हुए हैं, ऐसा कैसे हो गया। जस तेन प्रहलाद वाक्य न, प्रहलाद के वाक्य से, आप प्रहलाद की स्थिति जान रहे हैं ना, जिस तरह से प्रहलाद चेंज नहीं हो रहा है उसी प्रकार ये सब लोग उसी प्रकार हो गए, कोई अब परिवर्तन होने वाला नहीं है, एकदम पक्का डिवोटी बन गए। इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि एकदम पक्का भक्त बन गए, अब बदलेंगे नहीं, एकदम बदलने वाली स्थिति नहीं है, अब आपकी जैसी मर्जी कीजिए सरकार, अब हमें मत दबाव दीजिए कि इनको पढ़ाइए, अब हम नहीं पढ़ा सकते, हो गया। उनके कहने का मतलब यह है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, क्लियर बात है कि सब लोग भक्त हो गए, इनकी बुद्धि एकदम लग गई है कृष्ण में। तो इसको प्रभुपाद जी भी इन्हीं बातों को दोहराते हैं, इन्हीं टीकाकारों की बातों को कह रहे हैं कि बुद्धि में कांत संस्थितम, यह शब्द सूचित कर रहा है कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था, जितने लोग सुने थे, इस निष्कर्ष पर आ गए कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है, एकदम आ गए हैं, स्थित हो गए हैं। बात यह है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है, शिक्षा है और उसके उपदेश को सुनता है श्रद्धा विश्वास के साथ, वह कृष्ण भावना में स्थित हो ही जाता है, ये बात है। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में ऐसी भावना देखा, शिक्षक लोग देखे कि विद्यार्थी ऐसे चेंज हो गए हैं, आते हुए डर गए कि अब तो बाद में बात तो फैलेगी ही, क्योंकि सारा विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो गए, होते जा रहे हैं, इसलिए लोग रिपोर्ट किए। तो यहाँ शिक्षा है कि जैन के न प्रकारेण बुद्धि एकांत संस्थितम, किसी भी प्रकार से बुद्धि को एकांत में स्थित करना चाहिए, भगवान में स्थित करना चाहिए, प्रयास पूर्वक। वे लोग प्रतिकूल भाव से ग्रहण कर रहे हैं, हम लोगों को अनुकूल भाव से ग्रहण करना है। वे लोग हिरण्यकश्यपु और संडामर्क प्रतिकूल भाव से ग्रहण कर रहे हैं, उनके प्रतिकूल भावना में आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो गया। एक पहले तो आश्चर्य करते हैं राजा और हिरण्यकश्यपु और संडामर्क गुरुपुत्र, आश्चर्य कर रहे हैं और आश्चर्य करने के बाद उनका प्रतिकूल भावना है तो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ हो गया। तो भले ही प्रतिकूल भाव से लेकिन वो एकांत संस्थितम पर विचार कर रहे हैं कि इनकी बुद्धि एकदम कृष्ण में लग गई, आश्चर्य कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति से एकांत संस्थितम से रोकना चाहते हैं, लेकिन हमें अनुकूल भाव से ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण को निष्ठा के साथ पकड़ना चाहिए, श्रद्धा के साथ, और इसके लिए सुनना चाहिए। यहाँ एक शिक्षा है, बच्चे सुने हैं, सुनना बहुत जरूरी है और फिर तत्परता से पालन करना चाहिए, श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। और इसके साथ इसी में एक दूसरी शिक्षा है कि सुनना भी चाहिए किस से, प्रमाणिक एक निष्ठ कृष्ण भक्त के मुख से, जिसके चित्त में कृष्ण छाए हुए हैं, ऐसे भक्त के मुख से श्रवण करना चाहिए और तब उसका प्रभाव होगा एकांत संस्थितम, तब वह कुछ बोलता है कृष्ण के विषय में तो बुद्धि एकांत में स्थित हो जाती है। और एकांत संस्थितम का प्रबल उदाहरण आगे उपस्थित होने वाला है इसी अध्याय में, कि जिस तरह प्रहलाद महाराज के चित्त में कृष्ण छाए हैं उसको आप देखेंगे। अभी अभी रिपोर्ट जब किया गुरु पुत्रों ने तो हिरण्यकश्यपु एकदम एक्शन ले लिया तुरंत, अब तो पहले तो आदेश दे चुका था कि यह नीच जीने लायक नहीं है, इसको मार देना चाहिए। उदाहरण देता है कि जैसे किसी शरीर के किसी अंग में कोई घाव हो जाए और बिगड़ता जा रहा हो, कैंसर की स्थिति आ जाए, तो उस अंग को काट देना उचित है, भले ही अपना अंग है, उंगली है, हाथ है, पैर है, जिसके कारण पूरा शरीर विनष्ट होने जा रहा है, तो एक अंग को काटा जा सकता है। इसी प्रकार यद्यपि यह प्रहलाद हमारा पुत्र है, अपना है, फिर भी निश्चित रूप से यह हमारे शत्रु के पक्ष का है। इससे एक की बात नहीं है, सारा परिवार, सारा समाज बिगड़ सकता है इसके प्रभाव से, इसलिए इसको मार डालो, आदेश दे दिया था। और असुर समाज हर प्रयास करके थक चुके थे, प्रहलाद मरने वाले नहीं थे, उनको आग में जलाया गया, विष दिया गया, सांप से डसवाया गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, हाथी से दबाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। तब आज एकदम क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यपु एक्शन ले रहा है, खेरे नीच, किसके बल पर तुम इस तरह से अहंकार कर रहा है, नहीं जानता है तुम किसके आज्ञा के उल्लंघन कर रहा है। क्रोधस्य जस्य कंप्यन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। अरे नीच, केवल क्रोधित होकर देख देता हूं तो तीनों लोग कांपता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे भ्रिकुटी के इशारे पर तीनों लोग कांपता है, नहीं जानता है तुम। क्रोधस्य जस्य कंप्यन्ते, मेरे क्रोध करने पर तीनों लोग कांपता है, त्रयो लोका सहेश्वरा, लोक कांपता है मतलब पर्वत पहाड़ नदी सब कांपने लगता है, पेड़ पौधा, कहते हैं वो भी कांपता है और सहेश्वरा, और इसके साथ उसके ईश्वर जो स्वामी है, लोकाधीश्वर लोग, वो भी कांपते हैं। मेरे क्रोधित मुद्रा में चलने पर पृथ्वी कांपती है, हिमालय, नदी, पहाड़ सब कांपते हैं, पेड़ पौधा सब कांप जाते हैं, और इसके साथ सहेश्वरा, ईश्वर लोग भी, इंद, वरुण, कुबेर सब कांपते हैं। तस्य में भीतवन मुद्ध, अरे मूर्ख, उस हिरण्यकश्यपु से तुम डर नहीं रहे हो, शासनम किन बलोत्यगा, किसके बल पर तुम इतना अहंकार कर रहे हो। डांट रहा है क्रोध में प्रहलाद महाराज, कहते हैं किसके बल पर, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम। हे राजन, इस भ्रम में मत रहिए कि केवल मेरा और आपका, न केवलम में, केवल मैं ही नहीं, भवतस्य आप भी, हे राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम, संपूर्ण विश्व में जिसके पास जो बल दिखाई दे रहा है ना, परे वरे अमी स्त्री जंगमाये, छोटे बड़े, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने जीव हैं, ब्रह्मा दयो जिन बसम प्रणीता, नीचे छोटे और बड़े जितने लोगों में जो बल दिख रहे हो ना, उस प्रभु की कृपा से बल है, केवल हमारी बात नहीं है किसके बल पर, जिसके बल पर मैं बलवान हूं उन्हीं के बल पर तुम भी, और उन्हीं के बल पर इस चरचराचर जगत के सभी लोग, जिसके बल पर बलवान हैं, उस प्रभु के बल पर मैं इस तरह बोल रहा हूं। एकदम क्रोध में हिरण्यकश्यपु को आग, जैसे आग जल रहा है और उसी में ईंधन डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, लकड़ी डाल रहे हो, एकदम क्रोधित हो रहा था। और अंत में कहते हैं जहिया सुरम भाव मिमम तुमात्मन। अरे असुर, प्रहलाद महाराज का ये व्यंग है, असुर नीच, इस तरह कड़ा नहीं बोल रहे हैं, जहिया आसुरम भावम, आप अपने आसुरी भाव को छोड़िए तो क्या करें, तुम्हारे जैसे भक्त हो जाए। कहते हाँ, आसुरी भाव छोड़िए, समम मनोधस्त न संति विद्विष, लोगों से द्वेष मत कीजिए, सब जगह प्रभु रहते हैं, सभी जीवों के साथ समान व्यवहार कीजिए, अपने को बहुत बड़ा स्वामी मत मानिए, सभी जीवों में कृष्ण है, सबके साथ आत्मोत व्यवहार कीजिए और द्वेष छोड़िए, यह भगवान श्री हरि की सबसे बड़ी पूजा है पिताजी। आप राग द्वेष छोड़कर, अहंकार छोड़कर सभी जीवों से प्रेम कीजिए तो यह भगवान की सबसे, तद्धि अनंतस्य महत समर्हणम, उस अनंत शक्तिशाली भगवान की सबसे बड़ी पूजा है समर्हणम। हिरण्यकश्यप पूजा की विधि पूछ रहा है, पूजा की विधि पूछ रहा है, लेकिन ये तो एकदम निर्भय बोल रहे हैं कि आप हमारे प्रभु को संतुष्ट करना चाहते हैं तो एक क्रोध छोड़िए, अहंकार छोड़िए, आसुरी भाव छोड़िए, जो आपके मन में आसुरी भाव है उसको छोड़ दीजिए और उनकी पूजा कीजिए, सबके साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए। एकदम हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता जा रहा था, कहने लगा अरे निश्चित रूप से अब समझ में आ गया, तू निश्चित रूप से मरना चाहता है और अब मैं किसी दूसरे को आज्ञा नहीं देने जा रहा हूं, आज मैं तुमको अपने हाथ से मारूंगा। ये सत्य है, जब बुद्धि उत्पटांग हो जाती है, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, विनाश निश्चित हो जाता है, तो व्यक्ति इसी तरह बेसिर पैर की बातें करता है उत्पटांग। तुम निश्चित रूप से मरना चाहते हो, मैं समझ गया। अरे मंदभाग्य, इतने बड़े व्यक्ति का पुत्र होकर इतना अभागा नीच, तुम्हारे सामने मैं क्या बतलाऊं। अब तुम अपने ईश्वर को, अपने हरि को बुलाओ, जिसके बल पर तुम इतना बहक रहे हो। यश तया मंद भाग्योक्तो, अरे मंद भाग नीच, जिसके बल पर तुम इतना बहक रहे हो, बोल रहे हो मदन्यो जगदीश्वर, वह जगदीश्वर कहाँ है? क्वासो यदि सर्वत्र, सब जगह है। प्रहलाद महाराज इस श्लोक में, दो श्लोकों के अंदर अद्भुत भाव है। वो बोल रहा है और फिर अपने से प्रश्न करता है, प्रश्न करके उत्तर भी पा जाता है। बड़ा अव्यक्त रूप से इस श्लोक को बताया गया। प्रहलाद महाराज सिर हिलाकर या जैसे तैसे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की युक्ति को यहाँ नहीं रखा गया, लेकिन हिरण्यकश्यप के बोलने से पता चल रहा है कि प्रहलाद बोल रहे हैं। यश तया मंद भागोक तो मदन्यो जगदीश्वर, अरे मंद भाग्य, तुम्हारा जगदीश्वर जो जगत का मालिक है कहाँ है? क्वासव कहाँ है? यदि स सर्वत्र, वह सर्वत्र है, तो माने कहाँ है पूछते हैं, तो फिर पूछता है कि वो सर्वत्र है, तो इसका मतलब प्रहलाद महाराज बोल चुके हैं कि वो सर्वत्र है। प्रश्न करता है क्वासव, असव कहाँ है वह, क्व असव कहाँ है, कहाँ किस जगह है? तो यदि स सर्वत्र, तुम कह रहे हो सर्वत्र है, तो कस्मा स्तंभे न दृश्यते, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? कह रहे हो कि सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? खंभे में प्रहलाद महाराज को बांध दिया था, कहा कि जिस खंभे में तुम बंधे हो उसमें क्यों नहीं दिख रहा है? तुमको बचाने के लिए गोद में ले लेता या तुम्हारे सामने आ जाता, कहाँ है? अहंकार में बोल रहा है। तो सोहम विकथ्य मानस्य, तो प्रहलाद महाराज कह दिया खंभे में भी है। अरे अरे नीच, क्यों प्रलाप कर रहे हो? कहाँ खंभे में है, दिख क्यों नहीं रहा है? शिरा काया धरामिते, अभी इस खड़ग से, इस तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग करता हूं। यदि खंभे में है तो गोपाये हरिस्वाद्य, तुम्हारा हरि अभी तुम्हारी रक्षा करे, है खंभे में ना, अभी पता चल जाएगा। जस्ते शरण मिप्सितम, नीच कहीं का बहक रहे हो, मैं अभी देखना चाहता हूं कहा। इतना कह करके हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के आसन से उठा और खींच करके उस खंभे पर मारा। बार बार कह रहे प्रहलाद, है खंभे में, इसी में है, मेरे साथ खड़े हैं। तो उसको और क्रोध बढ़ गया और खींच करके एक मुक्का उस खंभे पर लगाया। ज्यों ही लगाया, तदैव तस्मी निंदोति भीषण, तत्काल उसी समय अत्यंत भीषण आवाज करते हुए बभू रेनांड कटाह मस्फुटम, उस खंभे को फाड़ करके सवैम स्वधिष्णो पगतम त्वजादय, इतना तेज आवाज हुआ कि ब्रह्मा के लोक तक आवाज गया, सत्य लोक तक। बहुत भयंकर आवाज करते हुए भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो आवाज सुन करके देवता लोग एकदम कांप गए, क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी सृष्टि के इंचार्ज है, वो तुरंत चल दिए, अरे हो क्या गया, कहा असमय में प्रलय होने वाला है क्या? वो भी आ गए। तो इस प्रकार वह प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह देव वही प्रकट हुए, और प्रकट होकर के जब चले तब कह रहे हैं एक श्लोक, इसी के बाद मैं पूरा करूंगा। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्याति अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हिरण्यकश्यपु देख रहा है कि एक अद्भुत जीव प्रकट हुआ है जिसका आधा अंग सिंह का और आधा मनुष्य का, तो स्तंभित देख रहा है कि खंभा फाड़ कर निकला है, न मृगम न मानुषम, न सिंह है न मनुष्य है। इसके ऊपर के पंक्ति में कहते हैं सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम, अपने भृत अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, संपूर्ण विश्व के हर वस्तु में हर कण कण में भगवान व्याप्त हैं, इस बात को बताने के लिए जो वेद की युक्ति है, श्रुतियों की युक्ति है कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, तो इस बात को प्रकट करने के लिए एकदम इस सिद्धांत को स्पष्ट बताने के लिए और अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए हमारे आचार्य कहते हैं निजभृत भाषितम, तो कौन किस भक्त की बात सत्य करने के लिए, तो तात्कालिक अर्थ है कि अपने भक्त प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए। प्रहलाद कह दिया कि इस खंभे में भी हैं, तो प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए खंभे से निकल गए। और निजभृत भाषितम ब्रह्मा की बात सत्य करने के लिए ब्रह्मा जी कह दिए थे तथास्तु, तपस्या किया था हिरण्यकश्यपु की और वरदान के रूप में मांगा था कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में न बाहर न धरती पर न आकाश में न मनुष्य से न पशु से, आपकी सृष्टि में किसी वस्तु से मेरी मृत्यु न हो, और न दिन में न रात में, बहुत बड़ा बाउंड बनाया था। तो उस बाउंड को तोड़ने के लिए, अगर वो बाउंड टूट जाएगा, अरे उसके अनुसार जैसा मांगा है उसी प्रकार हो जाएगा, तो ब्रह्मा की बात असत्य हो जाएगी। तो ब्रह्मा की बात की रक्षा करते हुए नृसिंह रूप में आए हैं, न मनुष्य न पशु। और इसके बाद पकड़ करके एकदम दरवाजे पर पकड़ लिए, न घर में न बाहर, और धरती पर नहीं अपने जांग पर रख दिए, न धरती पर न आकाश में, और न गीले से न सूखे से, और हथियार के विषय में भी मांग किया था, तो अपना नाखून बढ़ाकर न गीला है न सूखा है, और पकड़ करके फाड़ दिए ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए। निजभृत भाषितम, अपने भक्त ब्रह्मा की बात सत्य करने के लिए भगवान आ गए, तत्काल आ गए। पहले से माँ के गर्भ में नहीं थे, देवकी और कौशल्या के गर्भ में जैसे रहे वैसे नहीं, तत्काल आ गए। सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम, अपने भक्त की बात सिद्ध करने के लिए सर्व जगह सब रूप में कण कण में विष्णु व्याप्त हैं, इसको सिद्ध करने के लिए वो विष्णु हरि कृष्ण प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके हिरण्यकश्यपु का वध किए। तो इस प्रकार यह जो एकांत संस्थितम की व्याख्या में मैं यहां तक आया, जो प्रहलाद के अंदर एकांत संस्थितम एकदम एक में निश्चित सिद्धांत में है कि कृष्ण हैं, वो अवश्य रक्षा करेंगे, वो भक्त वत्सल हैं, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, इस सिद्धांत में एक निष्ठ भक्त को एकांत संस्थितम कहते हैं। एकांत में स्थित निश्चित रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे, इस विश्वास के साथ जो रहता है वो एकांत निष्ठ। तो ये प्रहलाद महाराज ऐसे एकांत निष्ठ भक्त थे, और अंतिम दम तक चाहे वो कितना हूं तर्जन गर्जन किया, तलवार निकाला, मारने दौड़ा, बताया परिचय कि मेरे क्रोध पर तीनों लोक कांपता है, फिर भी इनको कोई चिंता नहीं, एकांत संस्थित। उनको विश्वास है कि हमारे प्रभु हैं, ये नहीं कि किसी के कहने पर बहकाने पर बस श्रद्धा बदल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार जड़ भरत जी देवी के सामने रखा गया, खिलाया गया, तलवार निकाला गया, काटने की स्थिति आ गई, फिर भी इनको कोई चिंता नहीं है। और जब जड़ भरत को काटने के लिए तैयार हो गए तो देवी प्रकट हो गई और उन्हीं लोगों को काटने लगी। लेकिन इस एकांत निष्ठ को कोई चिंता नहीं कि मुझे काट देंगे। इस तरह से निर्भय होते हैं। गर्भ स्तुति में देवता लोग कहते हैं कि आपके भक्त निर्भय विचरण करते हैं, इस लोक में किसी से डरते नहीं है, क्योंकि किसी भी रूप में आप ही हैं और जो कुछ भी उनके प्रति क्रिया होती है आपकी कृपा मान लेते हैं। किसी अवस्था में आपकी कृपा मानकर वो सुखी रहते हैं। तो ये है एकांत संस्थितम का अर्थ। इस प्रकार प्रश्न के लिए कुछ समय चाहिए। जैसे रमाई प्रभु कह रहे थे रमाई प्राण, तो कथा के आवेश में समय बीत गया, फिर भी जो भी समय बचा है आप जिज्ञासा कर सकते हैं। श्लोक के अर्थ तो समझ ही गए। तो इस प्रकार भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा किए और प्रहलाद महाराज ने एक महत्वपूर्ण प्रीचिंग करके सारे असुर बच्चों को चेंज कर दिए। इसका रिपोर्ट हिरण्यकश्यपु के पास दिया जा रहा है। इस श्लोक में यही बात है, मुख्य बात है कि इनकी बुद्धि एकांत में स्थित हो गई है। यह प्रतिकूल भाव से वो लोग सोच रहे हैं। हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अनुकूल भाव से एक निष्ठ होना चाहिए कृष्ण में, और इसका उपाय है श्रवण, कथा सुनना श्रद्धा के साथ और एक प्रमाणिक एक कृष्णनिष्ठ भक्त के मुख से। तब अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति कृष्ण में एकांतिक रूप से लग सकती है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। कोई जिज्ञासा हो तो दो चार मिनट कर लीजिए, 10 मिनट तक। इसी तरह की चर्चा एक बार हम लोगों के भक्ति शास्त्री कोर्स में चल गया था। रामाकांत प्रभु जिज्ञासा कर दिए प्रसाद की महिमा पर, कि प्रसाद का अपना वस्तुगत शक्ति कहाँ चली गई। तो एक दिन इनसे चर्चा हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग भक्त नहीं बन रहे हैं, एक निष्ठ नहीं और बल्कि विषयों में उलझे जा रहे हैं। देखिए एक छोटा सा उदाहरण कि आप लोग रोज नाम अपराध सुनते हैं, तो अगर अपराध युक्त भजन किया जाए तो उसको नाम अपराध कहते हैं। नाम जप करने का जो स्टैंडर्ड है उसकी 3 विधि है, 3 स्तर होता है, एक नामापराध, एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। तो तीनों का 3 वस्तु शक्ति है ना, अलग अलग शक्ति है तीनों में, और तीनों का अलग रिजल्ट होना चाहिए। वस्तु शक्ति का मतलब जैसे आग को छुएंगे तो जलाएगा, उसकी वस्तु शक्ति है दाही का जलाना, मिर्च खाएंगे तो तीता लगेगा, चीनी गुड़ मीठा खाएंगे मीठा लगेगा, अगर मीठा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो है नहीं मीठा। उसमें वो वस्तु शक्ति रहना चाहिए किसी भी अवस्था में, क्योंकि यहाँ भागवतम में जब अजामिल प्रसंग में जब जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये पापी है इसको हम ले जाना चाहते हैं, तो भगवान के भक्त लोग कहते हैं नहीं ये पापी नहीं है। तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि इसके पाप का लंबी लिस्ट है, कह रहे हैं पापी नहीं है। तो बतला रहे कि इसने पाप तो किया था लेकिन भगवान का नाम उच्चारण किया, इनका पाप खत्म हो गया।
भगवान का नाम कहाँ उच्चारण किया, ये तो अपने बेटे का नाम बुलाया। तो भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि बेटा का नाम ओरिजिनली नारायण नहीं है, ओरिजिनली नाम तो नारायण का नारायण है, दुनिया कितना हूं रख दे तो इससे क्या हो गया। तो कहते लेकिन यह उच्चारण किया तो नारायण जानकर नहीं ना, ये तो अपने बेटे को जानकर उच्चारण किया ना। तब कहते हैं कि ओ हो नहीं सिद्धांत समझते हो, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्ततम अघम पुंसो दहे देधो जथा नल। कहते हैं कि देखो जानकर या अनजान में किसी भी प्रकार नाम का उच्चारण करे तो नाम पाप को मिटाएगा ही, जैसे जान या अनजान में आग का उपयोग कर लिया जाए तो आग जलाएगी ही, क्योंकि वस्तु शक्ति है आग का जलाना। उसी प्रकार नाम की वस्तु शक्ति है पाप मिटाना। तो वस्तु शक्ति का मैं अर्थ करने के लिए श्लोक बोला। तो ये वस्तु शक्ति है, नामाभास भी किया, शुद्ध नाम उच्चारण नहीं किया, उन कृष्ण के नारायण के नाम को पुत्र में उच्चारण किया तो निश्चित रूप से शुद्ध नाम नहीं उच्चारण किया, नामाभास किया। तो नामाभास का फल है पाप मिटा दिया, लेकिन कृष्ण प्रेम या वैकुंठ नहीं दे सकता है नामाभास। इसके लिए फिर से अजामिल को जाना पड़ा हरिद्वार में, बड़ी सावधानी पूर्वक शुद्ध नाम जपना पड़ा, तब विमान आया और वैकुंठ गया। तो नामाभास का दूसरा फल शुद्ध नाम का दूसरा वस्तु शक्ति और नामापराध की दूसरी वस्तु शक्ति। नामापराध करते हुए, नाम अपराध करते हुए जप करेंगे तो उसकी भी गति है नरक जाएंगे, वो नामापराध नहीं शुद्ध कर पाएगा, निश्चित नरक है। तो तीनों की तीन गति है, नामाभास पाप मिटा सकता है, नामापराध नरक ले जा सकता है, अशुद्ध कृष्ण नाम वैकुंठ ले जा सकता है। तीनों की तीन वस्तु शक्ति है। उसी प्रकार हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं तो इसी तीन स्टैंडर्ड में होता है, और प्रसाद का भी सेवन एक बार हम लोग भक्ति शास्त्री कोर्स में देवामृत प्रभु पढ़ा रहे थे और ऐसी जिज्ञासा हुई कि 6 बजे का कोर्स पूरा करना चाहिए, 8:20 पर पूरा हुआ। इस जिज्ञासा में हम लोग उलझ गए कि 4 से 6 केवल पढ़ाना था शाम को, लेकिन बढ़ते 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 8:20 तक बस उसी में उलझे रहे, 2.25 घंटा ज्यादा। तो इतना दुरूह बनता जा रहा था, ऐसा दुरूह बनता जा रहा था, और प्रश्न तो अपने संस्था की बातें हो गई, एकदम उलझ गए हम लोग, या फिर बाहर के लोगों कैसे जवाब देंगे, क्या करेंगे। तो इसी तरह बातें हो रही है। बाद में फिर हम लोग अलग से भी विचार किए, देवामृत प्रभु हम रमाकांत और सभी ब्रह्मचारी लोगों को हटाकर, तो इसके बाद स्थिति यह है, और अब आप उसी बात को कहवा ही देना चाहते हैं। तो देखिए, जबकि मैं इसको पब्लिकली वहां भी नहीं कहने का साहस किया और आज लगता है कि कहना पड़ेगा। बात ऐसी है कि जिस भाव से भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिस भाव भक्ति का शास्त्र में महत्व है, उसकी कमी है, उसकी कमी है, और इसलिए उसके अनुरूप रिजल्ट आ रहा है। जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि 64 माला जो हरिनाम जप नहीं करता है उसको अर्चन में अधिकार नहीं है। प्रभुपाद ने लोगों के स्टैंडर्ड देखते हुए 6 गुना कम कर दिया, 16 माला। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक आचार्य है ना, 64 माला जप करते 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 व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाएगा, नाम उच्चारण करते करते बाड़ी में मन में सब यही छाया रहेगा, शुद्ध रहेगा, और बैठकर भोग लगाएगा जब अर्चन करेगा तो अपने ठाकुर के साथ लाल लड़ाएगा, प्रेम के साथ उनको भोग देगा, खट्टा है, मीठा है, तीता है, नमक ज्यादा है, और इसमें गरम है, ठंडा है, किस रूप में है। तो ये मैकेनिकल जो पूजा हो रहा है उससे नहीं वो कृष्ण प्रेम आने वाला है, वो खुद बनाता है, एक एक टेस्ट को जानता है, खुद भोग लगाता है, बैठे रहता है, विचार करता है अब क्या चाहिए, अब इस समय क्या पंखा झेलता है, और ज्यादा कोई पंखा चला दिया ठंडा हो गया या कूलर चला दिया तो इस तरह नहीं, धीरे धीरे पंखा झेलता है, जैसे अपने प्रिय को खिलाया जाता है, विचार करता है अच्छा ये नमक चाहिए, मीठा चाहिए, पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, वो समय के अनुकूल बैठ कर उनको आधा घंटा 20 मिनट 45 मिनट जो भी है प्रेम के साथ उनके साथ बैठता है, वहाँ भोग लगाता है। इधर तो मानसिकता एकदम दूसरे ढंग की है, अभी भोग लगा रहे हैं लेकिन चित कृष्ण में है नहीं, थाली रख दिए और रखने के बाद 20 मिनट समय मंदिर से बाहर गप में बिता रहे हैं, जाकर फिर निकाल देंगे। अथवा कोई प्रेमी व्यक्ति आ गया उसके साथ बैठ जाते हैं, अब क्या मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता हूँ जो उस दिन कहा था, मुझे संकोच हो रहा है कि हम लोगों की स्थिति स्टैंडर्ड जो है गिर चुका है, न भोग लगाने में रुचि है न भोग के पदार्थ। मैंने यहाँ तक कहा कि प्रभु जी किसी भी अवस्था में पिज्जा कृष्ण प्रसाद नहीं हो सकता है, अपने टेस्ट को कृष्ण पर आरोपित नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सात्विक शाकाहार शुद्ध ढंग से भोग लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अपना जो प्रसन्न है उसी को बस तुलसी पत्र डाल दे भोग हो गया, और पुजारी का मन है नहीं, वो मेंबर के संतुष्टि में लगा है। ऐसे मैं पुजारियों को भी देखा हूँ कि भोग लगा रहे हैं, अगर वो कोई अचानक उस कोई मेंबर आ गया जिससे उसका मित्रता है, अगर दृष्टि पड़ गई तो तुरंत वहां से निकल कर दौड़ कर आता है, कुछ फल फूल देकर उसको संतुष्ट करना चाहता है और प्रसन्न हो, पुजारी जी हमको प्रसाद दिए माला दिए, खुश हो गया, कुछ दे देगा। चित्त में जब यह है तो कृष्ण उसके प्रसाद को, उसके हाथ के प्रसाद को कैसे ग्रहण करेंगे, और जब नहीं ग्रहण करेंगे, अपराध युक्त भोग लगाया तो उसके खाने से भी उसी तरह की वृत्ति आएगी। और प्लस ऐसे लोग जो शुद्ध चित्त से भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, जैसे तैसे धन लाकर दे दिए तो कृष्ण के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन सबके लिए ठीक नहीं है। कृष्ण एक भक्तमाल में मैं एक कथा पढ़ा था कि बंगाल में महाप्रभु के भक्तों को देखकर एक वेश्या चेंज हो गई कीर्तन करने देखकर, और वृंदावन आ गई, और गोविंद देव जी का सेवा चल रहा था उस समय, गोस्वामियों का समय था, और आ करके जो भी धन कमाई थी गोविंद जी को दे दी, गाना बनाना मुकुट बनाना सब करके। लेकिन लोग जानते थे बंगाली भक्त लोग की वेश्या है, स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो गोविंद देव जी ने स्वप्न दिया पुजारी को महंत को कि नहीं इसका धन स्वीकार कीजिए, हमारी सेवा में लग सकता है, श्रद्धा से दे रही है, तो ले लिया गया। और लेने के बाद जब भक्त लोग उसको, अब ज्यादा धन था तो गाना भी बनाए, मुकुट बनाए, ड्रेस बनाए, सब किए, लेकिन मन में आया कि भंडारा भी करें बहुत ज्यादा, तो इस तरह से जब भंडारा किए खाए तो ये तो गड़बड़ हुआ। और इसका रिजल्ट हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे भक्त विरक्तों को धातु क्षय हुआ, स्वप्न दोष हुआ, तब सबने गोविंद जी के पास अनशन किया, पूरा 21 दिन के अनशन चल रहा था कि आपने इस तरह का क्यों किया, इस धन को लेकर के हमारा धर्म नष्ट क्यों कराया। तब गोविंद जी स्वप्न दिए कि मैं कब कहा कि तुम लोग इसको खाओ, मैं तो अपनी सेवा के लिए कहा ना, भंडारा करने को तो नहीं कहा था ना, उसका उपयोग करना चाहिए था ना, मेरे मुकुट के लिए, मेरे ड्रेस के लिए, मेरे मंदिर निर्माण के लिए, तो उसको भोजन बनाकर खाने का प्रयास क्यों किया। कितनी बारीकी है इस घटना में। तो किसी तरह के धन इनमें लगाया जा सकता है, किसी के धन, किसी तरह का धन अपने में नहीं लगाया जा सकता है, और यदि लगा रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होना चाहिए होगा, वस्तु शक्ति तो आएगी ही। विषयी अन्न खाइले दुष्ट हैले मन, महाप्रभु ऐसा क्यों कहे हैं, आखिर ये कहे हैं बहुत सुनने के लिए केवल कि धारण करने के लिए, और रघुनाथ स्वामी को इतने स्ट्रिक्ट नियम क्यों बताते हैं, इसके पीछे भी कारण है। तो हम लोग जो विधि है प्रमाणिक विधि उसका फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह की विषमता होगी ही, अंतर आएगा ही, जो शुद्ध रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उस तरह की शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कमजोरी है, कैसे होगा, भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप कृपा कीजिए, गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, विनीत रहना चाहिए, दयन होना चाहिए और इस प्रकार से भक्ति का आचरण करना चाहिए, नाम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हमारे जिह्वा से उच्चारण होइए आप कृपा करके। एक टीकाकार लिखते हैं कि जिह्वा तो प्राकृत है, नाम तो अप्राकृत है, इन दोनों का मेल कैसे हो गया? तो लिखते हैं कि नाम जो है दिव्य है, अप्राकृत है, लेकिन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। अपने जिह्वा को जब उस नाम के पास ले जाते हैं, संपर्क कराते हैं, तो जब ही जिह्वा नाम का उच्चारण करती है तो वो नाम इस जिह्वा को पकड़ लेता है। जैसे शक्तिशाली चुंबक के पास कोई सीका ले जाएंगे लोहे का, तो उसको चुंबक पकड़ लेती है और चुंबक पकड़ लेता है, और फिर दूसरा सीका सीके के पास ले जाएंगे तो उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है, वो भी पकड़ने लगता है। तो नाम जो अप्राकृत है, अप्राकृत नाम का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राकृत जिह्वा भी अप्राकृत हो जाती है, और फिर जब हम उसको उच्चारण करेंगे उस जिह्वा से नाम का, भगवान के गुण कीर्तन का, तो सब अप्राकृत होगा और इस प्रकार हम अप्राकृत वस्तु से भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रसाद, सेवा, सारी चीज। तो यह स्थिति है, बड़ी बारीकी से, बड़ी सावधानी से करना चाहिए, लेकिन इतनी बारीकी, इतनी सावधानी से छोड़ नहीं देना चाहिए, बड़ा कठिन है करना चाहिए इसका मतलब यह है बचना चाहिए, करना चाहिए। अगर बिजली का कोई बहुत बड़ा जगह होता है तो वहां लिखा रहता है डेंजर, विपद, खतरा, इसका मतलब कि अब उसका कोई यूज ही ना किया जाए, यहाँ बहुत खतरनाक है। बुद्धिमानी के साथ मिस्त्री लोग यूज करते हैं ना बिजली का, लेकिन सावधानी भी बता देते हैं कि खतरा है, डेंजर है, बंगला में लिखे रहे विपद, डेंजर, खतरा, तीन भाषा में लिखे रहते हैं तो बंगाल में देखा हूं। तो इस तरह से उसका भी यूज किया जाता है ना, लेकिन सावधानी के साथ। अब उसका उपयोग करना चाहिए और जाकर पकड़ लिए तो जला देगा। उस कितना सुंदर उपयोग करते हैं, फ्रिज चलाते हैं, हीटर जलाते हैं, विपरीत तरह का यूज कर लेते हैं बुद्धिमानी से। तो उसी प्रकार भक्ति का जो सावधानी है उसे भी बचते हुए यूज कर लेना चाहिए, अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री। अब तो केवल हरिदास जी के ही प्रश्न में आप संतुष्ट हो जाइए, समय ज्यादा हो गया
आचार्य।